नचाऊं यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा नचाऊं जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरशत इस डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरशत इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की सामवेद गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 अध्याय 25 श्लोक क्रमांक 50 पितृनृपपुर्या द्वार दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिणपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः पितृनोपपुर्याद्वार दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिणपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः पित्रोः नृपपुर्याद्वार दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिणपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः पितृनृपपुर्याद्वार दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिणपञ्चालं अतिश्रुतधरान्वितः पितृनृपपुर्याद्वार दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिणपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः पितृः नृपपुर्याद्वार दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रम दक्षिण पंचालम याति श्रुत धरान्वितः। माताजी पितृनृप पुर्या द्वार दक्षिणेन पुरञ्जनः। राष्ट्रम दक्षिण पंचालम याते श्रुत धरान्वितः। शब्दार्थ भाषांतर का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, तो शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। पितृहु पितृहु नामक, नृप हे राजा, पुर्याः पुरी को, द्वाः द्वार, दक्षिणेन दक्षिण का, पुरंजनः राजा पुरंजन, राष्ट्रम राष्ट्र, दक्षिण दक्षिणी, पंचालम पंचाल नामक, याति जाता था, श्रुतधर्व अन्वितः अपने मित्र श्रुतधर के साथ। भाषांतर, नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितृहु था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिण पंचाल नामक नगर देखने जाया करता था। तात्पर्य, दाहिना कान कर्मकांडीय अर्थात सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुख उपभोग में जुड़ा रहता है, वह अपने दाहिने कान से सुनता है और अपनी पंचेंद्रियों का उपयोग पितृलोक जैसे उच्चतर लोक जाने के लिए करता है। इसीलिए दाहिने कान को यहाँ पितृहु द्वार कहा गया है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं शं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो इस श्रीमद् भागवतम की विषय के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे, तो उसके पहले मैं सब वैष्णवों के आशीर्वाद की कृपा याचना करता हूँ, और विशेष रूप से जो वरिष्ठ भक्त यहाँ पे उपलब्ध है, गौरलीला प्रभु है और बाकी सब। तो आज हम ये जो पढ़ रहे राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, स्कंद 4 अध्याय 25। तो हम इस पूरे चर्चा में हम देख रहे हैं कि किस तरह से नारद मुनि प्राचीन बर्हिषित राजा को प्रुंचन के द्वारा क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हम श्रीमद् भागवतम के ये जो विषय है, तो इस अभी का जो श्लोक चल रहे हैं, तो उस श्लोक में किस तरह से एक सिटी ऑफ नाइन गेट्स मतलब नवद्वारपुर, एक जीवात्मा इस शहर में रह रहा है, जो शहर क्या है उसको नव द्वार है, तो उसमें उसके ऊपर विशेष चर्चा चल रही है। तो कुछ समय पहले मैंने भी एक टॉपिक पढ़ा हुआ था कि जो एक विषय के इसी के ऊपर, उसी का भी नाम वही था, सिटी ऑफ नाइन गेट्स, द्रुतकर्मा प्रभु का था। तो मैं वो ढूंढने के लिए गया था और कल इंटरनेट पे देख रहा था, तो इंटरनेट पे पहले ही एडवर्टाइजमेंट था कि मतलब गूगल के ऊपर कि 30 साल पूरे हो गए करके, मतलब इंटरनेट आके कितने 30 साल हो गए। तो एक भक्त बोले कि जो 5000 साल में जितना उध्वस्त नहीं हुआ था पूरा विध्वंस, उतना 30 साल में हो गया था, है ना। तो मैं भी सोच रहा था मैं इस विध्वंस के सामने मैं क्या कर रहा हूँ। तो नॉलेज, तो गूगल देवता के पास नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। तो ठीक है, तो उसमें ढूंढ रहे थे, तो टॉपिक मतलब वो जो आर्टिकल था krishna.com इस वेबसाइट पे मिल रहा था, तो उसी के साथ गूगल पे और भी दिखा रहा था कि सिटी ऑफ नाइन गेट्स करके पुस्तक भी है। मैं बोला किसी भक्त ने लिखा होगा। तो सर ऐसे, तो जाते जाते वो अमेजोन पे गया कि बुक करके था, तो किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर मतलब एक पुस्तक लिखा हुआ है सिटी ऑफ नाइन गेट्स करके। तो अच्छा लगा कि लोग उसके ऊपर अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ बाकी भी लिस्ट दिखा रहे थे कि ये जो पुस्तक जिन्होंने लिया है तो उन्होंने बाकी की पुस्तक भी लिया है, जिस तरह से एक अलग अलग लेखक आजकल पुस्तक लिखते हैं वैसे। तो वहाँ पर एक पुस्तक था कि द लास्ट अवतार कल्की करके, और उसके ऊपर चित्र था कि हनुमान जी है और साइड में गन भी लगा के रखे है। तो ये है आज के युग में, हम जो लगता है कि ज्ञान लेंगे या फिर जो चित्त थरारक आकर्षक लगता है उसको ढूंढने का प्रयास करने जाते हैं, और उसमें जो फिक्शन बोलते हैं मतलब इस तरह की चर्चा की जिसको मनोकल्पित है मन के ऊपर। तो ये पढ़ के किसी का उद्धार नहीं होने वाला है। तो एलोगोरिकल स्टडी है मतलब कि इस तरह से था ये इस तरह से, ये बाहर के लोग भी उदाहरण देकर बताते हैं, लेकिन उससे जो किसी का जो चेतना है उसमें सुधार आने की शक्यता बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हो कौन सा है, नारद मुनि जी बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं प्राचीन बर्हिषि को जो कर्म कांड में लगे हुए थे, और उनको अभी वो राजा है उनके कार्य में पूरी तरह से लगे थे, तो उनको डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं कर रहे। तो एक रूपक रूप मतलब एक इस तरह से कथा बता रहे कि अरे एक सुंदर कथा है आप सुनिए, जिससे आपको चित्त आकर्षित होने वाला है, बहुत थोड़ा सा रोमांचकारी है। तो प्राचीन बर्हिषि सुनना चालू करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में अगर किसी को कुछ बताना है तो पहले उस व्यक्ति ने रुकना चाहिए और पहले सुनना चाहिए। तो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित जो जीवन है उसमें व्यक्ति पहले तो रुकता नहीं है। तो कभी कभी पुस्तक वितरण के लिए भक्त जाते हैं तो पहले बोलते रुक जाइए, बोलते रुकिए, तो फिर वो जब रुकता है तो फिर वो सुनना चालू करते हैं, नहीं तो लोग सुनते ही नहीं बहुत बार। तो यहाँ पे प्राचीन बर्हिषि को पहले वो उनके कार्य में पहले रोक दिया, बोले कथा है सुनना है आपको, सुन सकते क्या, और वो सुनाना चालू कर दिया। और इस तरह का जो ज्ञान है जो कर्म कांड में लगे हैं, लेकिन ज्ञान कौन सा दिया जा रहा है, ज्ञान मिश्र भक्ति जैसा, मतलब इसमें पूरा ज्ञान दिया गया है कि किस तरह से आगे जो ये शरीर कैसा है, उसमें नव द्वार कैसे है, जीवात्मा किस तरह से रह रहा है, ये पूरा उसमें वर्णन आने वाला है। तो आज के इस श्लोक में हम देखते हैं कि जो दक्षिण द्वार उसका नाम बताया है पितृ। मतलब अभी तक हमने जो सुना वो थे पांच द्वार सुने थे, ना? दो आँख है ना, दो नाक के जो नासिकाएं हैं, और फिर मुख के बारे में कल सुना हमने। तो ये है पूर्व दिशा में ऐसा बोलो। तो अभी दक्षिण दिशा, तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते दक्षिण दिशा मतलब दाहिना कान, दाहिना मतलब राइट राइट। तो ये दाहिना कान, इसमें बोला है कि कर्म कांड के बारे में अभी सुनकर वो जो सुनना चाहता है, और अभी ये किसके साथ जा रहे, मतलब अभी किस कोई द्वार रहता है, तो द्वार से कोई बाहर जा रहा है, तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं वो पूछते हैं कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, आप कहाँ जाने वाले है ना, कुछ तो डेस्टिनेशन रहेगा ना, कि द्वार से आप बाहर जा रहे, तो वो द्वार कहाँ पे जा रहा है, दक्षिण पंचाल, पंचाल नाम के एक जो राज्य में जा रहा है। देखिए ये जो पंचाल नाम का किंगडम है, मतलब देश है, इस देश में नवद्वारपुर या फिर सिटी ऑफ नाइन गेट्स, ये क्या है, एक शहर है। तो शहर से बाहर जाकर वो कहाँ जा रहा है, अलग अलग जहां पे उसको इच्छा है वहां जा रहा है, और जाते वक्त क्या कर रहे हैं, उसको किसी की तो सहायता की जरूरत है, उसके सिवा नहीं हो सकता। तो जिस तरह से मुख के द्वारा जिस तरह से जो कार्य करता है, वो कार्य करना चाहता है, तो उसको किसी की मदद की जरूरत है, और वो किसकी मदद है, वो जो प्रिसाइडिंग डीटी मतलब जो उस देवताओं की जरूरत है। तो इस पितृहू नाम के द्वार से जाएगा, मतलब वो क्या इच्छा कर रहा है कि वो पितृलोक या फिर उस तरह से जो उच्च स्तर के जो लोक है उसको जाने का प्रयास करेगा, और उसको किसकी सहायता की जरूरत है, अभी श्रुतधर। अगले वाले श्लोक में भी वही है कि अभी वो उत्तर द्वार मतलब जो बाया कान है, उस बाया कान से भी जाएगा, लेकिन वो जाएगा किधर, उत्तर पंचाल में जाएगा, और उसके साथ भी वो साथी कौन रहेंगे, श्रुतधर। ये तो हम अगले वाले श्लोक में, अगले वाले जो प्रवचन करता हूँ उसके बाद चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो दाहिना कान, इसके लिए क्या है, कर्म कांड में या सकाम कार्यों में क्या लगता है, लगा रहता है। तो इस दुनिया में बहुत आकर्षण है, जहाँ पे अगर हम धाम में जाते हैं किसी जो पवित्र नदी रहता है, मतलब वो भी धाम है, तो वो जैसे जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कर्म कांड कीजिए, तर्पण करना चालू कर दीजिए, तो सब आकर्षित हो जाते हैं। पहले बोलते हाँ ठीक है, तर्पण करना है, किन के लिए तर्पण करना है, पितरों के लिए, पितृलोक। तो ये पितृलोक क्या है, एक जो स्वर्ग से भी निचले स्तर पे, लेकिन वहां पे भी स्वर्ग के जैसे क्या उपभोग मिलते हैं, लेकिन वहां कब तक रह सकता है व्यक्ति, जब तक क्या उसके जो अच्छे कर्म है जिसकी वजह से पितृलोक पहुंचा गया है। दूसरी चीज है, जब तक उसके जो वंश में आ रहे वो उनके जो पुत्र है उसके द्वारा उनका क्या कर रहे हैं, श्राद्ध और तर्पण, ये अच्छी तरह से किया जा रहा है। तो अभी कलयुग में सोचना पड़ेगा कि पहले कर्म कांड अच्छे से करने वाला एक ब्राह्मण मिलना इतना आसान नहीं है। तो बहुत बार इच्छा रहती है, लोग बोलते हैं कि हम पितृलोक के लिए सब कर रहे हैं, पितरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो पद्धति है वो पद्धति के लिए जो योग्य ब्राह्मण, क्वालिफाइड ब्राह्मण मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये इतना करके पितृलोक प्राप्त करना, लेकिन पितृलोक में भी जगह क्या नहीं है, जो स्थिर नहीं है, वहां से भी क्या होगा, वापस पतन हो जाता है, और क्षीणे पुण्य मरते लोके विशंति, इस पूरे वापस पृथ्वीलोक पे आ जाते हैं। फिर भी जो हमारे वेद पुराण है वो सबसे ज्यादा चर्चा किसके ऊपर करते हैं, ये जो कर्मकांड के ऊपर, धर्मार्थ काम और धर्मार्थ काम, मोक्ष को भी ज्यादा इतना वो इतना चर्चा में नहीं रहता जितना धर्म अर्थ काम। तो आप ये कीजिए और उसके साथ इस जीवन में सुखी रहिए, और जब पितृलोक या स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने का प्रयास कीजिए। इस तरह के विषयों के ऊपर चर्चा होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रूपक कथा, मतलब एलोगरिकल परोक्ष रूप से दिया हुआ जो कथा है, ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि बहुत बार जो व्यक्ति जो अपने उस गुणों में रहता है, उस गुणों से क्या नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं पाएगा। अगर उसको बता दिया जाएगा कि जो कर्म कांड में लगा है, उसको बोलना है कि अरे नहीं, आपको क्या करना है, भगवान की शुद्ध भक्ति कीजिए और बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो चर्चा व्यक्ति सुनेगा नहीं। इसके लिए हम जब प्रचार करते हैं तो जो कंपनी में वगैरह लीडर्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं रहता है कि कृष्ण भगवान है, आपको भक्ति करना है, आत्मा है, यहाँ पे तीन तरह के ताप है, तो वो डायरेक्टली नहीं सुनेंगे। तो कैसे देना पड़ता है, उनके वो जैसे समझ सकते हैं उस तरह से, जिस तरह से कि हमें माइंड है, मन है, तो मन है तो मन के साथ कुछ हैबिट्स रहते हैं, कुछ इच्छाएं रहती है, लेकिन पूर्तता नहीं होता है तो माइंड मैनेजमेंट करना पड़ता है या स्ट्रेस आ जाता है। तो इस तरह से उनको फिर थोड़ा थोड़ा बता बता कर फिर कैसे बताया जाता है कि उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से प्रचार नहीं हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, लेकिन मैसेज वही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बता रहे कि वो पंचाल देश लेकर जा रहे हैं। पंचाल देश मतलब क्या है कि वो ऐसा नहीं कि द्रुपद का राज वो पंचाल है। पंचाल मतलब ऐसा देश कि जिसको पांच इंद्रियां क्या करना चाहती है, उसको जो ज्ञान इंद्रिया उसको क्या करना चाहती है, भोगना चाहती है, इसको पंचाल बोला गया है। वो अगले वाले आने वाले श्लोक में होगा अध्याय में कि पंचाल के ऊपर और भी चर्चा हो जाएगा। तो पहले महत्वपूर्ण है कि लोगों को सोचने के लिए प्रवृत्त करना बहुत जरूरी है। तो नारद मुनि क्या कर रहे हैं, वो सोचने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। ये इसी तरह से हम जो कथा है वो सुनते हैं जब ययाति और देवयानी के बीच में भी। ययाति और देवयानी का जो पूरा हम तो चर्चा नहीं कर रहे जो, लेकिन ययाति और देवयानी जब ययाति बहुत सालों तक भोग करते और भोग करने के बाद जब उनके मन में वो जो विरक्ति आ जाता है कि इतना भोग करके भी क्या नहीं हो रहा है, मन संतुष्ट नहीं हो रहा है, और फिर समझ लेते हैं अरे ये तो भोग के कारण है, और उस वक्त देवयानी को वापस वो कथा बताते हैं। तो देवयानी को बोलते हैं कि मैं आप आज को एक कथा बता रहा हूँ। तो बोला एक बकरा था, वो बकरा था वो बहुत एकदम तगड़ा था, शक्तिमान था, सुंदर था, और वो जंगल में गया। तो जंगल में ऐसे ऐसे घूम रहा था तो वहाँ पे उसने एक आवाज़ सुनाई दिया। तो देखा तो आवाज़ आ रहा था एक जो कुएं से आ रहा था, तो कुएं में देखा तो एक बकरी थी, और बकरी भी बहुत सुंदर थी। फिर बकरा और बकरी मतलब शादी हो जाता है वो और फिर वो पूरा बताते। फिर शादी होने के बाद बकरा बकरी खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक दिन वो बकरा दूसरे बकरी के साथ देखकर वो बकरी बहुत दुखी हो गई। अपने जो मालिक थे, मतलब उधर लिखा है ब्राह्मण ओनर, मतलब ब्राह्मण मालिक के पास चली गई और बोली कि कंप्लेन कर दिया कि देखिए क्या हो रहा है। तो उसने वो उसके शाप दे दिया, जिसकी वजह से वो मैथुन जीवन वो का वो उपभोग नहीं ले पा रहा था। तो उसने माफी मांग लिया वापस उसने फिर। तो ये जो चर्चा होता है तो ऐसा नहीं कि वो किसके अलग कुछ चर्चा कर रहे, लेकिन पहले क्या बता रहे, अरे पता है क्या हमारे जीवन में ऐसा हुआ था, ऐसे नहीं बता रहे, बोले बकरा बकरी करके। तो व्यक्ति को पता चलता है अरे वो तो हम ही है। तो उसी तरह से पुरंजन की जो कथा है वो प्राचीन बरहिषि के लिए ही है, ऐसा नहीं, वो हमारे लिए भी है ना, कि किस तरह से हम इस नवद्वारपुर, मतलब हम एक शहर में रह रहे हैं, और ऐसे हम अलग अलग लोग सब अलग अलग शहर में रह रहे हैं। सबके पास सिटी ऑफ नाइन गेट्स ही है,
नवद्वार पूरी है, लेकिन किसी का कॉमन हो जाता है, मतलब दोनों एक साथ निकलेंगे यहाँ से वहाँ से और एक साथ भोग करेंगे, तो तब हम देखेंगे कि पंचाल एक ये है देश। तो ये जो एलोगोरिकल मतलब प्रीचिंग जो कर रहे हैं वो किसके लिए किया जाता है कि व्यक्ति को हल्के हल्के से उसको क्या किया जाए, है ना, उसको कभी कभी वो दुखित हो सकता है तो उसको डायरेक्ट दुखित नहीं करना चाहिए, तो वो बताने का। तो नारद मुनि बहुत विशेष रूप से करते हैं। अभी यहाँ पे जो ऐसा ही एक बहुत सुंदर जो अभ्यास के द्वारा या फिर हमारे आचार्यों के जीवन में भी देखते हैं, जो दक्षिण भारत में नाथ मुनि होकर गए, तो नाथ मुनि के पुत्र थे ईश्वर मुनि। तो इस ईश्वर मुनि अपने जब शादी हुआ तो अपने पूरे परिवार के साथ वृंदावन गए थे, और वृंदावन को जाकर यात्रा कर कर जब वापस आए तो कुछ ही समय में उनकी पत्नी गर्भवती हुई थी और उनको पुत्र हुआ था, तो उस पुत्र का नाम रखा था उन्होंने, क्योंकि वृंदावन में जाकर आए थे अभी, इसी के लिए उस पुत्र का नाम रखा था यमुना। तो ये यमुना जैसे छोटे थे उसी वक्त उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तो अभी उनके पिताजी का देहांत हो गया तो उनको बस आश्रय था उनके दादाजी का जो नाथ मुनि है, और उनकी माता उनका ही। लेकिन अपने पिता का सॉरी अपने बच्चे का मृत्यु देखकर नाथ मुनि भी बहुत दुखी हुए थे, तो भी कहाँ पे चले गए थे, जंगल में चले गए, बोले कि अभी भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगेंगे और विरक्त जीवन जिएंगे। और इस विरक्त जीवन जी रहे थे तो जो ये यमुना थे वो भास्कराचार्य उनके मार्गदर्शन में अभ्यास कर रहे थे। तो 12 साल की उम्र तक वो जब बहुत अच्छी तरह से विद्वान होकर पढ़ाई करने के बाद मतलब अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी दिन एक व्यक्ति आ गया भास्कराचार्य के उधर आश्रम में, और उन्होंने बोला कि 2 साल से टैक्स नहीं दिया है। बोले टैक्स नहीं दिया है, कौन सा टैक्स? उस वक्त भास्कराचार्य नहीं थे, तो वहाँ पे एक पंडित थे अक्की अलवान करके, तो वो क्या करते थे, जो सारे विद्वानों को क्या करते थे, चैलेंज करते थे, मतलब वाद विवाद के लिए कि आप क्या कीजिए, हमारे साथ चर्चा कीजिए, अगर उस चर्चा में अगर आप जीतेंगे नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो भास्कराचार्य वो उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, तो इसी के लिए उनको कर देना पड़ रहा था। लेकिन उस दिन भास्कराचार्य नहीं थे, तो यमुना बोले कि कौन सा कर देना है, वो बोले कि अरे आपके तो आचार्य हार गए थे हमारे पंडित जी से। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अशक्य है। तो ये ना यमुना फिर क्या करते हैं, उस वाद विवाद को बोलते कि ठीक है, उनका एक तुच्छ शिष्य क्या करेगा, उनको वाद विवाद में उनको ये करेगा, मात दे देगा। तो ये वो शांति हो गया, बोले छोटा बच्चा ऐसा 12 साल का बच्चा बोल रहे हैं। तो वापस आ गए और उन्हें वो शिष्य ने बताया, अरे आपको चैलेंज कर रहे हैं भास्कराचार्य की शिष्य। तो पूरे सारे राज्य में चर्चा होने लगा कि 12 साल का बच्चा अक्की अलवान को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो ये उस पंडित को जो चैलेंज किया था, तो उसके लिए वो जब राज दरबार में आए थे यमुना, तो उनके देख के ही रानी राजा को बोली कि ये जो पुत्र है, ये जो है ना, ये क्या करेगा, इनको हराएगा। तो बोले अरे कैसे हरा सकता है, राजा बोले अगर ये हराएंगे तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। और उसी वक्त वो पंडित भी आ गए, वो पंडित रानी को बोलते बोलते अलावंदर अलावंदर मतलब ये कॉन्करर मतलब ये विजेता है, मतलब ये किस तरह से बोल रहे, एक टिप्पणी के रूप में उनको एक ऐसे सार्केस्टिक बोलते हैं ना कि जैसे डायरेक्ट नहीं बोलना है। तो रानी बोलते हैं अलावंदर यही आपको हराएगा, देखिए। तो वाद विवाद हो जाता है जिसमें वो हार जाते हैं और यमुना को राज्य मिल जाता है। तो हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में पूरी तरह से कि वो अच्छे तरह से अभ्यास कर रहे थे कहाँ पे, अपने गुरु के साथ, लेकिन अभी जो पूरा स्थिति बदल गया और अभी खुद वो जब राजा बन गए तो वो पूरी तरह से राज्य में लगे थे। लेकिन यहां पे नाथ मुनि की इच्छा थी कि अरे क्या हो गया उसके साथ, भगवान का शुद्ध भक्त बनना था लेकिन अभी राज्य कारोबार में लग गया, है ना। ये शुद्ध भक्तों के लक्षण थे उसमें, लेकिन ये क्या कर रहे हैं। तो इनकी इच्छा थी कि उनको वापस भक्ति में लाया जाए। तो उन्होंने अपने शिष्य राम मिश्र को भेजा था और राम मिश्र को बोल दिया था कि एक मेरी अंतिम इच्छा है कि आप क्या कीजिए, यमुना को क्या कीजिए, आप भक्त बनाइए, उसको भगवान का शुद्ध भक्त बनाइए। तो उसी तरह से अभी राम मिश्र जी जब सोच रहे थे कि किस तरह से उनको भक्त बनाना है, जब राजा को मिलने के लिए गए तो देखा कि इतना बड़ा लाइन लग गया था पूरा एक, और उसको राजा को मिलना है तो मतलब बहुत सारी कठिनाई पैदा हो रही थी। तो बोले करे क्या, तो उस वक्त उन्होंने तुडुवलई नाम की जो एक सब्जी है उन्होंने किनको दे दिया था, राजा के जो आचार्य मतलब आचार्य रहते हैं ना उनके जो खाना बनाते उनको दिया सब्जी। अभी वहां पे तुडुवलई क्यों दिया था, क्योंकि तुडुवलई एक आयुर्वेदिक सब्जी ऐसा है कि जो क्या करता है व्यक्ति को सत्व गुण में लेकर आता है। तो यहां पे राम मिश्र भी मिलना चाहते थे लेकिन पहले वो ये करना चाहते थे कि वो क्या करे सत्व गुण में आए। तो इसके लिए 2 महीने तक वो सब्जी दे रहे थे, पूरा 2 महीने तक, और वो जो ये थे खाना परोसने वाले वो भी अच्छे से बनाकर वो राजा को दे रहे थे और राजा को भी अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन जब सब्जी नहीं मिला, राम मिश्र ने जानबूझकर नहीं दिया था, तो बोले कि आज सब्जी नहीं है। वो बोले जो हर रोज सब्जी लेकर आते आज सब्जी नहीं लेकर आए। तो बोले सब्जी नहीं है ठीक है, कौन लेकर आते थे। बोले एक साधु लेकर आते थे। बोले साधु, साधु मेरे लिए सब्जी क्यों लेकर आ रहे, ठीक है अगली बार आए तो मुझे मिला दीजिए उनसे। तो राम मिश्र जी फिर उनको जब मिलते हैं तो यही शुरुआत हो जाती है कि व्यक्ति अगर साधु से भी मिलता है, लेकिन वो स्थिति बहुत जरूरी है कि किस तरह से वो सत्वगुण में थोड़ा सा रहेगा तो व्यक्ति पहले सुनना चालू करता है। तो स्थिति बन गया था, है ना, और सामने कौन है, राम मिश्र शुद्ध भक्त है इतने। तो राम मिश्र जी बोलते हैं कि आप तो इतने बड़े राजा है तो आपकी सेवा करना था, इसके लिए हम ये मैं सेवा में लगा था क्योंकि आप प्रजा के इतने कल्याणकारी कार्य में लगे हैं। लेकिन बोलते कि आपके लिए एक संदेश भी है, आपके जो दादाजी है नाथ मुनि वो आपके लिए एक खजाना छोड़ के गए। तो यमुना बोले क्या खजाना, एक्चुअली मन में सोच रहे थे अरे मुझे अभी खजाने की थोड़ी जरूरत थी। तो बोलते यमुना कि आप तो साधु है तो आप वो खजाने का तो उपयोग करेंगे ही नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे खजाना। तो वहां पे राम मिश्र जी बोलते हैं वो खजाना कैसे है कि 7 जो दीवारें हैं उसके द्वारा उसको क्या किया है, संरक्षित है। वो 7 दीवारों के बीच में वो खजाना है और वो जो 7 दीवारों के इसमें वो जो खजाना है उसको एक महान सर्प है उसको क्या कर रहा है, रक्षण कर रहा है। और वो जो जगह है वो 2 नदियों के बीच में है और उस खजाने को देखने के लिए कि बराबर ठीक से है कि नहीं, तो एक 12 साल में एक राक्षस आता है दक्षिण दिशा से आता है और दक्षिण दिशा से वो राक्षस आता है और उसके साथ ही देखता है एक मंत्र, और ये जो खजाना है एक मंत्र के द्वारा सुरक्षित किया गया है। तो यमुना बोले अरे मुझे वो खजाना चाहिए, कहां मिलेगा वो खजाना। तो राम मिश्र बोले बता सकता हूं। तो बोले चलो हम निकल रहे अभी। नहीं नहीं बोले उस खजाने को अगर हम प्राप्त करना है तो आपको अकेले आना है, पूरे इसके साथ नहीं, वो बहुत मुश्किलें पैदा होंगे। तो बोले ठीक है चलते हैं। तो अभी यमुना और राम मिश्र चल रहे और जब जंगल में जब चल रहे थे वो चल रहे थे मदुराई की तरफ से। मदुराई से कहाँ पे जा रहे थे, एक जगह पे जो जहां पे वो खजाना है, और उस खजाने की तरफ जा रहे तो जाते जाते राम मिश्र जी क्या करे, गा रहे भगवत गीता, एक एक अध्याय पूरा गा रहे, ये पहला अध्याय पूरा होता है, दूसरा अध्याय, तीसरा, ऐसे 18 अध्याय पूरे हो गए। तो ये सुनने के बाद यमुना वो सोच रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं, ये पहले मैंने भी सुना था। अभी देखिए, ये जब राम मिश्र जी मिले तो यमुना जी का उनका मतलब जो बाद यमुनाचार्य बन गए, वो यमुना राजा यमुना थे, उनका उम्र था 35 मतलब 35 उम्र, 12 से 35 मतलब कितना गैप है, 23 साल तक, वहां तक कुछ पूरा कुछ नहीं था उनका कनेक्शन वैसे डायरेक्ट। लेकिन अभी बोल रहे ये मैंने सुना हुआ, यही भगवद गीता है जिसके बारे में पढ़ता था, जिसके बारे में चर्चा करते थे, और इसी भगवान के बारे में मैं भक्ति में पूरी तरह से लग गया था। तो बोलते राम मिश्र को कि आप बताइए और बताइए और बताइए। तो ये है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो वापस साधु का जब संग मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वापस वो जो भक्तिमय कार्य में जहां पे वो अवरुद्ध हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, अनावृत्त हो, मतलब वो माया का जो आवरण रहता है वो दूर होना चालू हो जाता है। तो और भी कुछ दिनों तक जब भगवद्गीता के बारे में सुन रहे और राम मिश्र के बारे में सुन रहे तो एक श्लोक तक आ जाते हैं भगवद्गीता में, जो 12वां अध्याय 8 नंबर का श्लोक, मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं तं न संशयः। तो बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं मय्येव मनाधस्त्व, कि आपका जो मन है वो पूरी तरह से मुझ में लगाइए, सिर्फ मुझ में अलोन, सिर्फ मुझ में ही, मय्येव, एव मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा। और फिर क्या बोलते हैं मयि बुद्धिं निवेशय, मुझ में ही क्या कीजिए, बुद्धि लगा दीजिए। और बोलते हैं कि आप इस तरह से मुझ मेरे मतलब मेरे भक्ति में सेवा में क्या कीजिए, जीवन व्यतीत कीजिए सिर्फ और सिर्फ, तो आप मुझे प्राप्त करेंगे। और आप मुझे प्राप्त करेंगे लेकिन इसमें क्या नहीं, कोई संशय नहीं है। ये जब यमुना जी ने सुना है ना, तो अभी हमने भी ये श्लोक सुना अभी, लेकिन जब यमुना जी ने सुना तो वो रोना चालू कर दिया, हाय हाय करने लगे, रोना इतने जोर से चालू कर दिया कि मैं क्या कर दिए। ऐसे भगवान जो जिसके भक्ति में हमें पूरी तरह से लगना था लेकिन कहां से कहां चले गए। तो उस वक्त तो बोलते राम मिश्र जी को कि मुझे कृपया इस भौतिक जंजाल से मुक्त कीजिए, आप अपना मुझे शिष्य बनाइए, मुझे खजाना वगैरह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राम मिश्र बोलते नहीं, वो खजाना बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है, नाथ मुनि ने खास आपके लिए छोड़ कर गए। बोलते ठीक है लेकर जाएंगे। तो जब वो देखना चालू कर दे कावेरी के उस दो कावेरी नदी के बीच के बीच में जो द्वीप है उसको जब देख रहे थे, 7 द्वारों से है ना सुरक्षित ऐसा, तो गोपुरम देख रहे थे और एक द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, चौथा द्वार, पांचवा, छठा, ये 6 द्वार के अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद फिर रामेश्वर जी बोले देखिए वो है वो खजाना, वो कौन सा खजाना है, जो आपके दादाजी आपके लिए छोड़ के गए, यही है वो 7 द्वारों से सुरक्षित कावेरी नदी के बीच वाला है ना, और जो अनंत शेष द्वारा रक्षित, जो अनंत जो सर्प बोलते हैं ना, महान सर्प वहां पे एक रक्षण कर रहे हैं, वह अनंत शेष और जिनके ऊपर वो विश्राम कर रहे हैं, ऐसे कौन है, श्री रंगनाथ जी, तो ये है आपका खजाना। तो उसको देखकर यमुना पूरा पूरी तरह से रोते हुए गए और उन्होंने भगवान जी प्रार्थना कर रहे थे और माफी मांग रहे थे कि हम भगवान की भक्ति से कितना दूर गए थे। और वो जो राक्षस था जो हर 12 साल में आते हैं, वो कौन है, विभीषण, जो दक्षिण दिशा से आते हैं, क्योंकि जो विभीषण के द्वारा ही क्या हुआ था, जो विग्रह है उनकी प्रतिष्ठापना हुई थी, तो ये विभीषण जी आते हैं और उनकी पूजा कर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अभ्यास दिया गया इस तरह से कि, लेकिन ये कहां पर लेके जा रहा है, भगवान के पास लेकर जा रहा है ना। लेकिन यहां पे भी क्या किस तरह से कथा बताया कि वहां पे खजाना है एक राजा को आकर्षित करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी रहता है कि जिस तरह से स्थिति के अनुसार हमें प्रचार करना चाहिए। नारद मुनि जैसे जैसे ध्रुव महाराज की स्थिति को देखकर है ना उनको जैसे प्रचार किए, या फिर मृगरारी उनको जैसे प्रचार किया था, और यहाँ पे जो प्राचीन भरीषि को कर रहे तो ये देखते हैं कि ये नवद्वार गेट्स देखते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि भगवान का मंदिर रहता है उसको भी गेट्स रहते हैं। अगर हम जगन्नाथपुरी में देखेंगे तो वहां पे भी कैसे चार द्वार है। अभी यहां पे एक जीवात्मा क्या कर रहा है, इन नवद्वारों से बाहर जाकर भोग करता है, लेकिन जो भगवान का मंदिर रहता है वहां पे क्या रहता है, या फिर भगवान का स्थान जहां पे रहते हैं वैकुंठ, वहां पे भी क्या है, वहां पे गेट से, लेकिन वहां व्यक्ति क्या करता है भगवान के पास जाता है, अंदर चला जाता है, गेट से बाहर नहीं जाता, वो गेट के अंदर चला जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी में चार द्वार है, पूर्व दिशा में है सिंह द्वार है ना, और फिर दक्षिण दिशा में अश्व द्वार है। जो पूर्व दिशा में सिंह द्वार है वो मोक्ष का प्रतीक है, दक्षिण दिशा में जो अश्व द्वार है वो है काम, और उत्तर दिशा में हाथी द्वार मतलब हाथी हस्ती द्वार बोलते हैं उसको, वो अर्थ, और जो पश्चिम की दिशा में है वो व्याघ्र द्वार, वो धर्म का प्रतीक है। इसका मतलब ये कि आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके द्वारा जो पितृलोक या स्वर्गलोक इनकी प्राप्ति में मत पीछे पड़िए, किनके तो धर्म अर्थ काम इनका उपयोग करके कहाँ पे जाना है हमें, भगवान के पास जाना है। और किसी भी रास्ते से आप क्या कर सकते हो, मतलब भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि अगर हम भक्ति द्वारा जो बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे वो खजाना था वो सुरक्षित था, किसी एक मंत्र से सुरक्षित था, वो कौन सा मंत्र था, ओम नमो नारायणाय। तो उसी तरह से हमारे ऊपर प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि उन्होंने ऐसे सारा जो ट्रेजर पूरा जो खजाना है हर एक जगह पे जगह जगह पे खोल के रखा है, और हमें क्या करना है ना, किसी एक गेट से भी आ सकते हैं, किसी भी गेट से जहां से आ सकते हैं, और आकर क्या करना है भगवान के पास आकर भक्ति में कार्य में क्या करना है उनका आनंद देना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सारे भक्त रहते हैं वो कहाँ बोलते हैं हम यात्रा जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग भी टूरिस्ट ट्रैवल्स करके चले जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त रहते हैं जो गुरुवर्य रहते हैं वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि सारे भक्ति में लगे हुए लेकिन किस स्थिति में रजोगुण और तमोगुण अवस्था में रहता है बहुत बार। तो उनको अगर पहले कुछ सुनाना है तो उनको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, सत्वगुण में लेके जाना पड़ेगा, सत्वगुण में लेके जाना है, और सत्वगुण में लेकर कहाँ लेकर जाते हो, डायरेक्ट भगवान के पास में लेके जाते हैं। इसी के लिए हम हमारे जो गुरुवारे रहते हैं उनके साथ जैसे कार्तिक में अलग अलग धाम जाते हैं, या फिर अलग अलग धामों में जाकर भी वहाँ पर क्या करते हैं श्रवण करते हैं। तो ये श्रवण क्या करता है, वो जो खजाना था जिसको बहुत सुरक्षित रखा था लेकिन वो क्या होता है हमारे लिए मिल जाता है। तो ये हमारे लिए कर्मकांड समझना या फिर उसके साथ ये पितृलोक क्या है समझना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन भक्तिमय कार्य क्या है वो समझना बहुत आसान है। और प्रभुपाद और पूर्ववत आचार्य और अभी के वर्तमान आचार्य इनकी विशेष कृपा की वजह से क्या होता है ये समझना तो आसान बन गया, लेकिन जीवन में उतारना उससे भी आसान हो गया है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे नवद्वार से बाहर निकलकर भगवान के द्वार के अंदर आना चाहिए, भगवान के और भक्तों का संग करना चाहिए, और भक्तों के द्वारा जो भगवान का गुणगान है उसको सुनकर हमारी जो चेतना है उसको उच्च स्तर पर लेके जाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम अभी रुकते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।